पृष्ठ संख्या 180, 14। बात अधूरी न रह जाए इसलिए अंत में आलोचना की उन विमर्शवादी प्रवृत्तियों की चर्चा जरूरी है जिन्होंने पिछले 2 दशकों के दौरान रचना और आलोचना में अपनी पहचान कायम की। कहना न होगा कि यह इतिहास की सवालर्टन स्टडीज नाम की शाखा के प्रभाव का नतीजा था। मूलतः इसका नाता सामाजिक संरचना की भेदवादी दृष्टि के खिलाफ आवाज उठाने की प्रवृत्ति से था। रंग, लिंग, जाति, वर्ण के आधार पर समाज में सदियों से चले आते भेदभाव के खिलाफ यह उन समूहों की पहचान का संघर्ष था जिन्हें तथाकथित मुख्यधारा समझे जाने वाले समुदाय ने हाशिए पर धकेल रखा था। भारतीय साहित्य में यह प्रतिरोध रचना और आलोचना दोनों स्तरों पर स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के रूप में प्रकट हुआ। वस्तु स्थिति के चित्रण में यह साहित्य करुणा उपजाता था और प्रतिरोध में आक्रोश। साहित्य के क्षेत्र में यह नई विषय वस्तु और तदनुकूल नए शिल्प की शुरुआत थी। यह ऐसा यथार्थ था जिसे समझने सराहने के लिए नए दृष्टिकोण और आलोचना के नए औजारों की अपेक्षा की जाने लगी। यहाँ तक तो बात तर्क सम्मत थी, पर कठिनाई तब पैदा होने लगी जब इन्होंने अपने लिए आरक्षित क्षेत्रों की मांग और वकालत शुरू की। तर्क यह था कि फैंस के दूसरी तरफ के रचनाकार यानी गैर दलित लेखक और पुरुष ना इनकी बात को सही ढंग से व्यक्त कर सकते हैं और ना इनकी रचनाओं का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं। आधी शताब्दी पहले नए रचनाकारों ने अनुभूति की प्रामाणिकता और प्रतिमानों की नवीनता का जो नारा बुलंद किया था वह एक बार फिर बदले रूप में वैधता की मांग करने लगा। जाहिर है यह मांग न व्यवहारिक थी न तर्कसंगत। दोनों स्थितियों में अंतर यह था कि नए रचनाकारों ने अपनी रचनाशीलता की समझ के लिए नई समझ और संवेदनशीलता की अपेक्षा की थी। ठीक ठीक पृष्ठ संख्या 182 ना समझे जाने की शिकायत जरूर की थी, पर औरों को हिस्सेदारी से वर्जित नहीं किया था। विमर्शों के इस नए दौर में जो नए विषय, नए रचनाकार, नया शिल्प सामने आया उसमें धीरे धीरे अपनी रूढ़ियाँ बनने लगीं और क्रमशः विषय वस्तु में मौलिकता की जगह दोहराव ने ले ली। दलित साहित्य में यह समस्या कम स्त्री केंद्रित रचनाओं में ज़्यादा सामने आई। भारत के जातीय भेदभाव से उत्पन्न सामाजिक स्थितियां ठेठ देसी धरती की पैदावार थीं। अधिकांश लेखक उस वस्तु स्थिति के भोक्ता या साक्षी रहे थे, इसलिए काफी हद तक वे सानुभूत स्थितियों की पुनर्रचना कर रहे थे। इस साहित्य के मूल्यांकन के प्रतिमानों का आधार निपट देशज विषय वस्तु थी। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र प्रस्तावित करने के कुछ प्रयास भी हुए। इन रचनाओं का अनुभव संसार कला के पूर्व प्रचलित मानदंडों की कसौटी पर अपने नग्न यथार्थ के कारण कठिनाई पैदा कर रहा था। विषय वस्तु के अनुरूप इनकी भाषा को सराहने में समाज के तथाकथित शालीन और भद्र पाठक वर्ग को असुविधा और असमंजस पैदा हो रहा था। यह साहित्य उस पारस्परिक अवधारणा को चुनौती दे रहा था जिसके अनुसार कला का एक काम तथ्यों की पुनर्रचना करके उन्हें सुंदर और ललित रूप में प्रस्तुत करना होता है। जीवन में भदेश, अश्लील या कुत्सित कहकर अवमानित करने वाली सवर्ण मानसिकता के सामने यह नग्न अनिवार्य यथार्थ चुनौती की तरह खड़ा अपनी स्वीकृति की मांग कर रहा था। इसकी अभिव्यक्ति का अपना नजरिया और पैमाने थे। इस नजरिए से दलित साहित्य की परिभाषा कुछ ऐसी होगी, दलितों के द्वारा दलितों के बारे में दलितों के लिए लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य है। जाहिर है यह दलित साहित्य की पहचान तो हो सकती है, प्रतिमान नहीं। इसमें भी वह उसी साहित्य को मान्यता देना चाहते हैं जो केवल अंबेडकरवादियों से प्रभावित है। इस सिद्धांत को समर्थन देने वालों में केवल जन संस्कृति मंच नाम की संस्था है जो अपने को मार्क्सवादी लेनिनवादी कहती है। विचार के स्तर पर इसका संबंध उस नई विचारधारा से जुड़ता है जो उत्तर आधुनिकता या उत्तर संरचनावाद के नाम पर विकासशील या तीसरी दुनिया कहे जाने वाले देशों में प्रचलित हुई। जहाँ के परंपरावादी समाजों में जाति और धर्म आदि की अनेक श्रेणियाँ मौजूद हैं। भारत में यह सवाल पृष्ठ संख्या 183 पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान की राजनीति के साथ जुड़ गया। अंबेडकरवाद के नाम पर एक ऐसी विचारधारा निर्मित हो चली संयोग से, जिसकी संगति पश्चिम के अनेक सिद्धांतों और सबाल्टर्न स्टडीज और जेंडर स्टडीज से बैठती थी। समीक्षा के लिए यह इस साहित्य की अलग कैटेगरी के रूप में स्वीकृति का आग्रह था। कृतियों की गुणवत्ता के बजाय दलित बनाम सवर्ण और स्त्री बनाम पुरुष व्यवस्था वाली दृष्टि से कैटेगरी बनाकर किए जाने वाले मूल्यांकन को ही यह विमर्श न्यायसंगत मानता था। इसने संदेह नहीं की किसी व्यक्ति का जन्मना दलित या स्त्री होना ऐसी हकीकत होती है जिसके कारण वह उन स्थितियों और अनुभवों से गुजरता है जिनके प्रत्यक्ष अनुभव की तीव्रता का जैसा एहसास उसे होता है किसी गैर दलित या पुरुष को नहीं हो सकता। कोई दूसरा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों और कल्पना का चाहे जितना विस्तार कर ले, उस अनुभव को उसकी तीव्रता और तनाव के साथ आपको अनुभव नहीं करा सकता। पर यह भी तो सही है कि इस यथार्थ से जुड़े रचनाकारों के अनुभव लगभग एक जैसे होते हैं। सबके लेखन में एक जैसी घटनाएं घटित होती दिखाई पड़ती हैं। यथार्थ की भी रूढ़ियाँ बनने लगती हैं, उसकी रचनात्मकता और साहित्यिकता संदिग्ध हो जाती है। रूढ़ियों के सहारे रचा गया साहित्य चाहे वह आत्मकथा हो या कुछ और, प्रभावी नहीं हो सकता। गैर दलित रचनाकारों ने दलितों के बारे में जो साहित्य लिखा उसे इन लेखकों ने संरक्षणवादी कहकर खारिज कर दिया। दलितों के प्रति दया दिखाने वाला जिस साहित्य को ये दलित साहित्य मानते हैं, उसका लक्षण है सारी सवर्ण व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा और उस व्यवस्था को तोड़कर एक नई व्यवस्था कायम करने के लिए पहल। तो क्या इस गुस्से और आक्रात्मकता की तीव्रता ही रचनाओं की उत्कृष्टता और साहित्यिक गुणवत्ता का पैमाना होगी? यह उन समुदायों की पहचान का संघर्ष था जिन्हें मुख्यधारा समझे जाने वाले समुदायों ने हाशिए पर जगह दे रखी थी। साहित्य में यह प्रतिरोधी स्वर दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के रूप में प्रकट हुआ। विमर्श दरअसल मिशेल फूको के डिस्कोर्स का अनुवाद है जो मूल के अभिप्राय को पूरी तरह व्यक्त नहीं करता पर बेहतर शब्द के अभाव में प्रचलित हो गया है। पृष्ठ संख्या 184। साहित्य में यह नई विषय वस्तु और नए शिल्प की शुरुआत थी। यह ऐसा यथार्थ था जिसमें मूल्यांकन के लिए नया दृष्टिकोण और आलोचना के नए औजारों की अपेक्षा की जाने लगी। यहाँ तक तो बात तर्कसंगत थी पर कठिनाई तब पैदा हुई जब रचनाकारों ने अपने लिए आरक्षित क्षेत्र की मांग और वकालत शुरू की। तर्क यह था कि गैर दलित लेखक न दलित जीवन का सही ढंग से चित्रण कर सकते हैं और न दलित रचनाकारों का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रश्न स्वानुभूति बनाम सहानुभूति का हो गया और जो इस जातिगत भेदभाव के भुक्तभोगी थे उन्होंने रचना और आलोचना दोनों की जिम्मेदारी उठाने की पेशकश की। इन रचनाओं का निपट देशज यथार्थ कला के पूर्व प्रचलित प्रतिमानों की कसौटी पर अपने नग्न और नए स्वरूप में कठिनाई पैदा कर रहा था। विषय वस्तु के अनुरूप इनकी भाषा को सराहने में समाज के तथाकथित शालीन और भद्र पाठक वर्ग के सामने असुविधा और असमंजस की स्थिति थी। अतः दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र प्रस्तावित करने के कुछ प्रयास भी किए गए। इसमें संदेह नहीं कि साहित्य की विषय वस्तु के रूप में यह नया यथार्थ उस पारंपरिक अवधारणा को चुनौती दे रहा था जिसके अनुसार कला का एक काम तथ्यों की पुनर्रचना करके उन्हें सुंदर और ललित रूप में प्रस्तुत करना होता है। सवर्ण मानसिकता जीवन की जिस सच्चाई को भद्देस अश्लील या कुत्सित कहकर अपमानित करती रही थी, उसके सामने यह नया यथार्थ चुनौती की तरह खड़ा अपनी स्वीकृति की मांग कर रहा था। इसकी अभिव्यक्ति का अपना नजरिया और पैमाने थे। जिन रचनाकारों ने इसके समर्थन के लिए आवाज उठाई, दुर्भाग्य से उनमें मूल्यांकन के निश्चित प्रतिमान प्रस्तावित करने का विवेक उतना नहीं था जितना इनका नेतृत्व लूटने की आवेगपूर्ण मुद्रा। गंभीर वैचारिक विश्लेषण की जगह झंडा बरदारी की आकांक्षा से प्रेरित नारेबाजी का उत्साह उनमें अधिक प्रबल था। इनमें सबसे बुलंद आवाज़ हंस के संपादक राजेंद्र यादव की थी। उन्होंने दलित विमर्श के लिए पत्रिका के रूप में वर्षों एक सार्थक मंच प्रदान किया। संबद्ध सरोकारों पर बहसें की और कराई, पर मूल्यांकन की कोई निश्चित कसौटियां वे नहीं सुझा सके। इसका कारण संभवतः गंभीर सरोकार से ज़्यादा अपने आप को इस विमर्श में प्रासंगिक और केंद्रीय स्थिति में बनाए रखने का आग्रह था। कहना ना होगा कि अपने इस प्रयास में वह बहुत पृष्ठ संख्या 185 हद तक सफल भी हुए। इसके बावजूद कि उन्होंने अपने भाषणों और संपादकीयों में लगातार अपने को दोहराया, उन्हें इस पूरी बहस को पूरी जिंदादिली से एक दशक से भी अधिक समय तक चलाए रखने का श्रेय तो दिया ही जाना चाहिए। वास्तविकता यह है कि इस साहित्य के जितने पक्ष समर्थक और प्रवक्ता उठ खड़े हुए, उतने आलोचक और सिद्धांतकार नहीं। अंततः आलोचना का दायित्व तो निर्वाह करने का बीड़ा स्वयं रचनाकारों ने उठाया, पर यहाँ भी उनकी आपसी कलह और प्रतिस्पर्धा के धारणा यह आलोचना विवादों के चक्रव्यूह में फंस गई। प्रेमचंद की कहानी कफन पर होने वाली बहस दलित बनाम सवर्ण दृष्टि का मामला होने के साथ दलित रचनाकारों के बीच आपसी मतभेद का भी मामला हो गया। ठीक ऐसी ही स्थिति धर्मवीर और उनके विरोधियों के बीच कई मुद्दों को लेकर पैदा हुई, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न दलित समाज में स्त्रियों की हैसियत का भी था। भूलना नहीं चाहिए कि यह सवर्ण बनाम अवर्ण रचनाधर्मिता का सवाल होने के अलावा अवर्णों के बीच उपजातियों और विभिन्न समुदायों के बीच आपसी टकराहट का भी हो गया था। आपसी टकराहट का भी हो गया, जिसका असर इनकी आपसी बहसों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा। जाति उपजातिगत विभाजन के अलावा सामाजिक स्थितियों में अंतर ने भी इनकी भाव संरचना में अनेक अंतर पैदा कर दिए। संपन्न और विपन्न, सत्तावान और सत्ताहीन, ग्रामीण और नागर, शिक्षित अशिक्षित या अल्पशिक्षित, हर वर्ग के लेखक साहित्य रचना की दावेदारी करने लगे। ऐसे परिदृश्य में अनुभूति की प्रामाणिकता की जांच कठिन हो जाती है और प्रतिमान के रूप में उसकी वैधता संदेहास्पद। दलित विमर्श के महत्व का प्रमाण यह है कि कोई महत्वपूर्ण पत्रिका ऐसी नहीं बची जिसने इस विषय पर विशेषांक ना निकाला हो, पर अपनी अलग पहचान की लगातार मांग और दावेदारी के बावजूद शायद ही किसी ने इस साहित्य के कोई निश्चित आलोचनात्मक प्रतिमान निर्धारित किए हों। भारतीय सामाजिक जीवन में वर्ण, जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर भेदभाव व्यवस्था का ऐसा प्रश्न है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। सामाजिक न्याय का प्रश्न जीवन में धर्माधारित वर्ण व्यवस्था से नालबद्ध है, नाभिनालबद्ध है। समय समय पर इसका विरोध तो होता रहा, पर भारतीय मानस में बद्ध मूल धार्मिकता का निदान गांधी के उदार वैष्णवता में खोजा, पृष्ठ संख्या 186, और अंबेडकर ने धर्मांतरण बौद्ध धर्म में धर्म के ब्रैकेट में बौद्ध धर्म में धर्म भाव के उन्मूलन या उससे मुक्ति में नहीं। सामाजिक स्तर पर भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष का एक स्वदेशी और दूसरा वैश्विक संदर्भ है। भारत में नवजागरण का यह प्रमुख और स्वाधीनता संग्राम का पूरक एजेंडा रहा, पर स्वाधीन भारत में क्रमशः यह सामाजिक न्याय से ज्यादा सत्ता की राजनीति और वर्चस्व का सवाल होता गया। उसी को दमन से मुक्ति का राजमार्ग समझा जाने लगा। वैश्विक स्तर पर मानवीय अधिकारों के हवाले से रंग, नस्ल, लिंग, धर्म, जाति पर आधारित संगठन आकार लेने लगे। बुनियादी रूप में यह औपनिवेशिक वृत्ति के विरोध की लड़ाई है, पर इसका अस्थायी निदान आरक्षण के सहारे सत्ता और महत्व की छीना झपटी कर अपनी पहचान कायम करने में नहीं पाया जा सकता। आरक्षण के गलियारे से उन्नति का रास्ता तय करने वाला आत्मसम्मानहीन व्यक्ति अंततः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कमजोर ही साबित होता है। स्वयं अंबेडकर ने भी आरक्षण को इस समस्या के अस्थायी या प्रलंबित निदान के रूप में प्रस्तावित नहीं किया था, वह इसका समर्थन क्षमताओं और योग्यताओं का विकास करने के अवसर से वंचित समुदाय को समान अवसर मुहैया कराने के नज़रिए से करते थे। दलित विमर्श में एक समस्या दलित पद के विशेषण परक इस्तेमाल से सामने आई। यह पद क्रमशः उन रचनाओं का वाचक हो गया जो दलितों के द्वारा दलितों को विषय बनाकर की जा रही थी। दलित जीवन की समस्याओं को विषय बनाकर दूसरे रचनाकारों ने पहले भी रचनाएं की थीं और अब भी कर रहे हैं, पर इन रचनाओं को प्रामाणिक अनुभूति के अभाव को तर्क बनाकर खारिज किया गया। सहानुभूति के विपरीत स्वानुभूति को तरजीह देकर सहानुभूति के विपरीत स्वानुभूति को तरजीह देकर कहना ना होगा कि विषय के वस्तुनिष्ठ चित्रण के लिए प्रामाणिक अनुभूति जितनी आवश्यक होती है उतनी ही स्व के अतिक्रमण की क्षमता, वरना रचना पूर्वग्रहग्रस्त होने के लिए अभिशप्त होगी। दलित विमर्श ने साहित्यिक रचनाधर्मिता को नए आयाम दिए, उसके सरोकारों के दायरे का विस्तार किया, पर उसमें प्रवेश को प्रतिबंधित कर उसे एकांगी और संकीर्ण भी बनाया। यह एक तरह के साहित्यिक जातिवाद को प्रास्त्रय देना था जो इनके भीतरी असुरक्षा बोध को उजागर करता था। दलित विमर्श की मूल संकल्पना की सबसे बड़ी सीमा यही रही कि वह दलित सवर्ण संघर्ष को मूल्य रूप में प्रस्तावित करता है, समाज के इन धड़ों की पहचान प्रतियोगी रूप में करते हुए इनके बीच टकराहटों की धार के पैनेपन को एक महत्वपूर्ण प्रतिमान का दर्जा देता है। नतीजतन साहित्य में दृष्टि की एकांगिता को बढ़ावा मिलता है। प्रतिरोध, आक्रोश, संघर्ष समाज की वास्तविकता तो हो सकते हैं, उन्हें रचनाओं की पहचान भी बनाया जा सकता है, पर मूल्यांकन के लिए प्रतिमान का दर्जा देने में व्यावहारिक कठिनाई पैदा होती है। इसलिए और भी कि ये सीमा पार के दूसरे आलोचकों की नियत और क्षमता दोनों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी स्थिति में यह एक सीमित आरक्षित क्षेत्र के रचनाकारों के बीच रचने और सराहने का मामला होकर रह जाता है। इस साहित्य से जो नया बोध और युक्तियां सामने आईं, उन्होंने क्रमशः रूढ़ियां विकसित कर लीं और ऐसी ब्रांड धर्मिता पैदा हो गई जिसके कारण दोहराव और आपसी टकराव की संभावना बढ़ने लगी। रचनाकार की जाति और वर्ण ज्यादा से ज्यादा उसके अनुभव जगत की पहचान और उसके दृष्टिकोण की समझ और व्याख्या में मददगार हो सकता है, पर रचनात्मक क्षमता की व्याख्या और मूल्यांकन का आधार नहीं बनाया जा सकता। आधार नहीं बनाया जा सकता। इसी कारण लगभग 2 दशकों तक फैली वैचारिक सरगर्मी के बावजूद दलित विमर्श के बीच इस साहित्य की परख के ऐसे निश्चित प्रतिमान उभर कर नहीं आए जिसके आधार पर रचनाओं के सफल असफल अच्छी बुरी होने का निर्णय किया जा सके। पर आपसी विवादों के बावजूद ऐसे नामों की लंबी सूची है जिन्होंने रचनात्मक हिस्सेदारी तो की ही, इस साहित्य की समझदारी विकसित करने की दिशा में भी पहल कदमी की। इनमें उल्लेखनीय हैं धर्मवीर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नमीशराय, जयप्रकाश कर्दम, कमल भारती, सूरजपाल चौहान, अजय नावरिया, रूप नारायण सोनकर, शिवराज सिंह, तेज सिंह आदि। इनके अलावा प्रोफेसर तुलसीराम का उल्लेख, उनकी आत्मकथा मुर्दहिया और इस पूरे विमर्श में गंभीर वैचारिक हस्तक्षेप दोनों के लिए विशेष रूप से किया जाना चाहिए। गैर दलित रचनाकारों में राजेंद्र यादव और मुद्रा राक्षस का और भारतीय भाषाओं के दलित साहित्य से परिचित कराने का लगातार उद्यम करते रहने के लिए बजरंग तिवारी का योगदान स्वीकार किया जाना चाहिए।